नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश के अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर औपचारिक रूप से ध्वज फहराएंगे। राज्यपाल ने जदयू के वरिष्ठ नेता और नव निर्वाचित विधायक नरेंद्र नारायण यादव को विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ दिलाई। श्री यादव नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाएंगे। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, मंत्री विजेंद्र यादव, श्रवण कुमार, नितिन नवीन समेत कई मंत्रियों ने आज अपना पदभार संभाला। और जस्टिस सूर्यकांत बने भारत के प्रधान न्यायाधीश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश के अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर औपचारिक रूप से ध्वज फहराएंगे। पवित्र भगवा ध्वज राम राज्य के आदर्शों को मूर्त रूप देते हुए गरिमा, एकता और सांस्कृतिक निरंतरता का संदेश देगा। एक रिपोर्ट।
श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर होने वाले ध्वजारोहण के मद्देनजर परिसर को तैयार करने का काम पूरी तेजी से चल रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में होने वाले धर्म ध्वजारोहण कार्यक्रम के लिए तीसरे दिन वैदिक मर्मज्ञ आचार्यों द्वारा गणपति पूजन, पंचांग पूजन, षोडश मातृका पूजन कराया गया। तत्पश्चात राम भद्र मंडल और अन्य समस्त पूज्य मंडलों का आह्वान और पूजन हुआ तथा विष्णु सहस्त्र नाम एवं गणेश अथर्व शीर्ष की आहुतियां पूर्ण की गयी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को देखते हुए अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की जा रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
इधर सीतामढ़ी के पुनौरा धाम स्थित मां जानकी मंदिर में कल आयोजित होने वाले श्री सीताराम विवाह महोत्सव को लेकर तैयारियां अंतिम दौर में हैं। विवाह पंचमी के अवसर पर होने वाले इस विशेष आयोजन को लेकर प्रदेश के विभिन्न भागों और नेपाल से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मंदिर के महंत कौशल किशोर दास ने बताया कि पारंपरिक पूजा मटकोर का आज आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि कल विवाह उत्सव का दिव्य आयोजन किया जाएगा, जिसके बाद बुधवार को निशान शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस अवसर पर पूरे मंदिर परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। जदयू के वरिष्ठ नेता और मधेपुरा के आलमनगर से नवनिर्वाचित विधायक नरेंद्र नारायण यादव को 18वीं विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने आज राजभवन में आयोजित एक सादे समारोह में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रोटेम स्पीकर विधानसभा के नव निर्वाचित सदस्यों को सदन की सदस्यता की शपथ दिलाएंगे। राज्य में नई सरकार के गठन के बाद विभिन्न विभागों के मंत्रियों का कार्यभार ग्रहण करने का सिलसिला जारी है। उप मुख्यमंत्री सह राजस्व और भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने आज पदभार ग्रहण किया। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन मंत्री विजेंद्र यादव, श्रम संसाधन मंत्री संजय सिंह टाइगर, नगर विकास एवं आवास मंत्री नितिन नवीन और पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री सुरेंद्र मेहता ने भी अपने अपने विभागों का पदभार ग्रहण कर लिया है। उप मुख्यमंत्री सह राजस्व और भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि विभाग में किसी भी तरह का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राजस्व कार्यों को पारदर्शिता के साथ पूरा किया जाएगा।
सभी राजस्व से संबंधित कार्यों को पारदर्शिता के साथ सामाजिक सौहार्द बनाए रखते हुए अंचल से लेकर विभाग तक बेहतर करने के प्रयास होंगे। ऐसे भी तीन विभाग की विशेष चर्चा होती है बिहार में, बालू से जुड़े हुए बालू माफिया का, दारू माफिया का, और इन दोनों के द्वारा अवैध कमाई करने वाले लोग भूमि माफिया बन जाते हैं। पूरी निगाह सरकार की होगी और नए ढंग से अच्छे लोग को न्यायोचित वातावरण बनाने की हम लोग भूमिका निभाएंगे।
नीतीश कुमार मंत्रिमंडल में मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे विजेंद्र यादव ने स्पष्ट किया है कि राज्य में शराबबंदी जारी रहेगी। पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि शराबबंदी कानून के क्रियान्वयन में गड़बड़ी को ठीक किया जाएगा।
बहुत दिनों के बाद ये विभाग मेरे जिम्मे था ही, पूरी समीक्षा वगैरह करके जितना ज्यादा बेहतर काम हो सकता है उसको करेंगे। शराबबंदी रहेगी, उसमें गड़बड़ी जो है उसको ठीक करेंगे।
उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि राज्य के युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए रोड मैप तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विभाग राज्य से पलायन रोकने के लिए औद्योगिक संरचना के विकास के लिए कार्य करेगा।
प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, सब लोगों ने बिहार के युवाओं से एनडीए सरकार को फिर से लाने का आह्वान किया और युवाओं को रोजगार मिले, ये हमारी प्राथमिकता रही और इसलिए केंद्रीय नेतृत्व ने मेरे ऊपर ये जिम्मेवारी दी है कि उद्योग विभाग आने वाले समय में बिहार के युवाओं को रोजगार दे और बिहार का खुशहाली युवाओं की खुशहाली है।
ग्रामीण विकास सह परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि नीतीश कुमार के जनहित के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए संकल्प के साथ कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दोनों विभाग जनता से किए गए वादों को पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
जनता के हित के लिए जनता के साथ जो कमिटमेंट है नीतीश कुमार जी का, उस कमिटमेंट को एक एक करके पूरा करने में, चाहे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो चाहे ग्रामीण विकास हो, उसमें एक एक करके जनता की इच्छा आकांक्षा को पूरा करने में अपने पूरा समय का इस्तेमाल करें।
नगर विकास एवं आवास तथा पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित बिहार के सपने को साकार करने की दिशा में काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नागरिक सुविधाओं और बेहतर सड़क संपर्क पर मुख्य फोकस रहेगा।
अब 25 से 30 का जो समय हम लोग को मिला है, नरेंद्र मोदी का जो विकसित बिहार का सपना है, जो विजन है, उसको आगे बढ़ाना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रगति यात्रा के माध्यम से जो रोड मैप को पिछले 20 वर्षों में गति दी है, उस गति को और गतिमान करना और सबसे बड़ी विषय है गुणवत्तापूर्ण सड़क का निर्माण, समयबद्ध सड़क का निर्माण और नए एक्सप्रेस वे, नए रिंग रोड की कल्पना को साकार।
श्रम संसाधन मंत्री संजय सिंह टाइगर ने कहा कि राज्य सरकार की सभी योजनाओं को गुणवत्ता के साथ पूर्ण किया जाएगा। पटना में संवाददाताओं के साथ बातचीत करते हुए श्री टाइगर ने कहा कि विकसित बिहार बनाना हमारा लक्ष्य है।
देखिए, कोई भी जिम्मेवारी एक चुनौती होती है, हम इस जिम्मेवारी को चुनौती के रूप में लेते हैं। जो मुख्यमंत्री जी का विजन है, जो सरकार का लक्ष्य है और पूर्व से जो योजनाएं चल रही है उसको कैसे गति मिले और सरकार के मंशा के अनुसार, मुख्यमंत्री जी के विजन के अनुसार विभाग आगे बढ़े, इस दिशा में सार्थक प्रयास किया जाएगा।
कांग्रेस पार्टी ने अनुशासन समिति की अनुशंसा पर प्रदेश कांग्रेस के 7 नेताओं को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया है। इनमें कांग्रेस सेवा दल के पूर्व उपाध्यक्ष आदित्य पासवान, प्रदेश कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष शकीलुर रहमान, कांग्रेस किसान प्रकोष्ठ के पूर्व अध्यक्ष राजकुमार राजन, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के पूर्व अध्यक्ष कुंदन गुप्ता के नाम शामिल हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Patna पर जा सकते हैं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में उन्हें पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति सूर्यकांत देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। उन्होंने न्यायमूर्ति भूषण आर गवई का स्थान लिया है, जो कल सेवानिवृत्त हो गए। एक रिपोर्ट।
मैं सूर्यकांत,
जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ
जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ
1962 में हिसार हरियाणा में जन्मे न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने 1984 में हिसार जिला न्यायालय में वकालत शुरू की। न्यायमूर्ति सूर्यकांत को जुलाई 2000 में हरियाणा का सबसे युवा महाधिवक्ता होने का गौरव प्राप्त हुआ। अक्टूबर 2018 में न्यायमूर्ति सूर्यकांत को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। मई 2019 में उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया। भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति सूर्यकांत का कार्यकाल लगभग 15 महीने का होगा। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
शपथ ग्रहण समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र का आज निधन हो गया। वे 89 वर्ष के थे। मुंबई के विले पार्ले स्थित शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। एक श्रद्धांजलि।
1960 में दिल भी तेरा हम भी तेरे फिल्म से हिंदी फिल्म जगत में डेब्यू करने वाले बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र ने 89 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली। मुंबई के विले पार्ले स्थित शमशान घाट पर धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार किया गया। बड़े बेटे सन्नी देओल के मुखाग्नि देने के साथ ही हिंदी फिल्म के एक अध्याय का अंत हो गया। धर्मेंद्र के निधन की खबर सुनकर फिल्म जगत से लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलके में शोक का सन्नाटा पसर गया। हर तरफ से शोक संदेश आने लगे। इधर धर्मेंद्र के चाहने वाले उनके डायलॉग, उनकी अदाकारी और उनके किरदार की चर्चा में मशगूल हो गए।
मजनू ने लैला के लिए किया था, रांझा ने हीर के लिए।
धर्मेंद्र ने अपने 6 दशकों के फिल्मी करियर में 300 से अधिक फिल्मों में अपनी अदाकारी का जलवा बिखेरा। उनकी यादगार फिल्मों में शोले, चुपके चुपके, राम बलराम, आंखें फूल और पत्थर जैसी सैकड़ों फिल्में शामिल हैं। पिछले साल 2024 में तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया फिल्म में अंतिम बार वो नजर आए। धर्मेंद्र फिल्मी किरदारों को पर्दे पर जीवंत बना देते थे।
मैं भी तेरे खून की कसम खाकर कहता हूँ, एक एक को चुन चुन के मारूंगा, चुन चुन के मारूंगा।
यही कारण है कि हिंदी सिनेमा में सबसे अधिक हिट फिल्में देने का रिकॉर्ड भी उनके नाम है। हिंदी फिल्म में अमूल्य योगदान के लिए उन्हें 2011 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। धर्मेंद्र ने राजनीति में भी किस्मत आजमाई और 2004 में भाजपा के टिकट पर बीकानेर से लोकसभा के सदस्य भी बने। धर्मेंद्र पंचतत्व में विलीन हो गए, लेकिन उनकी यादें सिनेमा प्रेमियों और चाहने वालों के बीच हमेशा जीवित रहेगी। अलविदा धर्मेंद्र। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से मैं उपेंद्र पासवान।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिग्गज अभिनेता के निधन पर शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि धर्मेंद्र के निधन से भारतीय सिनेमा को अपूर्णीय क्षति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि धर्मेंद्र का निधन भारतीय सिनेमा में एक युग का अंत है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की है। समस्तीपुर जिले के पूसा थाना क्षेत्र अंतर्गत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय परिसर में एक केमिकल से भरी बोतल में विस्फोट की घटना में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अपर पुलिस अधीक्षक संजय कुमार पांडे ने बताया कि सफाई कार्य के दौरान यह घटना हुई है। उन्होंने बताया कि गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को पटना रेफर कर दिया गया है। पटना जिले के गोपालपुर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या करने के बाद भाग रहे 2 अपराधियों की भीड़ ने पीट पीट कर हत्या कर दी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि 3 शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और दोनों मामलों की अलग अलग धाराओं के तहत जांच की जा रही है। रोहतास जिले के धौड़ार थाना क्षेत्र अंतर्गत एक पत्थर खदान में 2 बच्चों के शव बरामद किए गए हैं। एएसपी अतुलेश झा ने बताया कि प्रथम दृष्टया नहाने के दौरान डूबने से बच्चों की मौत हुई है। उन्होंने कहा कि हर पहलू पर मामले की जांच की जा रही है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश के अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर औपचारिक रूप से ध्वज फहराएंगे। राज्यपाल ने जदयू के वरिष्ठ नेता और नवनिर्वाचित विधायक नरेंद्र नारायण यादव को विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाई। श्री यादव नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाएंगे। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, मंत्री विजेंद्र यादव, श्रवण कुमार, नितिन नवीन समेत कई मंत्रियों ने आज अपना पदभार संभाला। और जस्टिस सूर्यकांत बने भारत के प्रधान न्यायाधीश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।